पृष्ठ संख्या 139, अध्याय 14, वर्तमान एकल सोलो तबला वादन। प्राचीन काल में ध्रुपद धमार गायन शैली में पखावज तबला वादकों को साथ संगत करते समय अपनी विद्या और वादन कुशलता के प्रदर्शन का पूरा मौका मिलता था, इसलिए वह संगतकार अपनी तैयारी का, गणित के कौशल का, समृद्ध भाषा का, प्रतिभा का और अपनी हाजिर जवाबी कलात्मक साथ संगत का सिद्धता के साथ प्रदर्शन किया करता था। लेकिन आगे चलकर ख्याल गायक पद्धति में ऐसी बखूबी साथ संगत करने का मौका तबला वादक को मिलना मुश्किल हो गया और इसी प्रकार दुविधामय परिस्थिति में से कलात्मक एकल तबला वादन पद्धति की शुरुआत हुई। वह विकसित हुई, अलग अलग वादन शैलियां निर्माण हुई। यह एकल तबला वादन पेशकार, कायदा, रेला, टुकड़ा आदि प्रकारों के जरिए प्रस्तुत हुआ करता है। सभी वादन शैलियों का बखूबी प्रदर्शन करने वाले महान तबला वादक 1970 तक के काल में बहुत असरदार तबला वादन प्रस्तुत किया करते थे, लेकिन उस्ताद थिरकवा, उस्ताद अमीर हुसैन खां, उस्ताद हबीबुद्दीन खां, पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखेलाल, पंडित समता प्रसाद आदि समर्थ कलाकारों की बढ़ती हुई उम्र या मृत्यु के कारणवश घरानेदार वादन शैली के समर्थक कलाकारों की परंपरा लगभग लुप्त हो गई। परिणामतः नए कलाकारों के लिए घरानेदार वादन शैली के आदर्श भी नहीं रहे। शायद इसी वजह से नई पीढ़ी के कलाकारों का वादन तुलना में कम असरदार होने लगा है। इसी समय यानी 1950 से 1970 के बीच महान प्रतिभावान और सामान्य सौंदर्य दृष्टि के लयकारी पर विशेष अधिकार रखने वाले सितार वादक पंडित रविशंकर जी एक लोकप्रिय कलाकार थे, जो भारत में और विदेशों में भी बहुत सी महफिलों में अपना वादन प्रस्तुत किया करते थे। उनके सितार वादन ने तबला वादन कला को एक नया आयाम प्रदान किया। उनकी अपेक्षा थी कि साथ संगत का तबला वादन किसी अलग ढंग की वादन शैली से प्रस्तुत होना चाहिए। उनका विश्वास था कि इस शैली से प्रभावी साथ संगत करने के उपरांत भी उनके सितार वादन का असर कम नहीं होगा। इसी वजह से वे तबला वादक को निसंकोच और पूरी तैयारी के साथ वादन करने का अवसर देते थे। उस समय उनकी साथ संगत पंडित कन्हाई दत्त, पंडित चतुरलाल जी, पंडित सपन चौधरी और पंडित समता प्रसाद, पंडित किशन महाराज और खास करके उस्ताद अल्लाह रखा करते थे। इन सभी कलाकारों पर पंडित रविशंकर जी के वादन विचार और कलात्मक सौंदर्य दृष्टि का असर हुआ। पृष्ठ संख्या 140। उनमें से उस्ताद अल्लाह रखा को उनका सामीप्य भी बहुत मिला। इस सामीप्य से पंडित रविशंकर के साथ संगत करने के दौरान वाद्य संगीत की साथ संगत करने की एक प्रभावी नई शैली विकसित हुई। इसी समय सितार, सरोद आदि साज भी बहुत ही लोकप्रिय हुए। इनको बजाने वाले महान कलाकार भी इसी काल में पैदा हुए, जिनमें पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद विलायत खां, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद रईस खां, उस्ताद अमजद अली खां के नाम उल्लेखनीय हैं। वाद्य संगीत पर अधिकार रखने वाले इन कलाकारों की लोकप्रियता भी असामान्य थी और भारत में और विदेशों में होने वाली सभी सांगीतिक सभाओं में उनकी महफिलें होती थी। ये सभी कलाकार बहुत तैयारी के साथ वादन करते थे। उनके प्रस्तुतिकरण में होने वाली लयकारी, छोटी छोटी असरदार तिहाइयाँ, इन सब का प्रयोग श्रोताओं को आकर्षित करता था। पंडित रविशंकर जी ने शुरू हुई सूक्ष्म लयकारी से सजी वादन शैली का परमोच्च उत्कर्ष हमें पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद साहित्य परवेज के वादन में प्रतीत होता है। इन साजों की साथ संगत के लिए घरानेदार, पेशकार, कायदा, रेला जैसी रचनाएं कम असरदार साबित हुई और इस तरह की साथ संगत के लिए मर्यादित शब्द समूहों का तैयारी में कलात्मक प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार गत टुकड़ों की भाषा प्रधान रचनाओं के बजाय अलग अलग प्रकार की तिहाइयों का प्रयोग होने लगा। इन वादकों के लिए अनुरूप साथ संगत की तबला वादन शैली के निर्माण एवं विकास में उस्ताद अल्लाह रखा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इस शैली की परिपक्वता और लोकप्रियता का उच्चांक हमें उस्ताद जाकिर हुसैन की कलात्मक और खूबसूरत साथ संगत में प्रतीत होता है। तबले पर नाजुक या दमदार साथ संगत में वे बड़ी आसानी से करते हैं। उनके चाट पर बजाए हुए गूंज युक्त वर्ण एवं बाएं पर निर्मित प्रभावकारी और सुरीले घुमारे समस्त श्रोताओं को आकर्षित करते हैं। सूक्ष्म लयकारी पर उन्होंने काबू पा लिया है, इसलिए यह कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि प्रभावशाली, अनुकूल और श्रोताओं को आकर्षित करने वाली कलात्मक और हाजिर जवाबी साथ संगत करने में वे हिंदुस्तान के अद्वितीय कलाकार हैं। वाद्य संगीत के साथ होने वाली तबले की साथ संगत का एक आदर्श उदाहरण उस्ताद जाकिर हुसैन ने हमारे सामने रखा है। भारत के अधिकांश श्रेष्ठ कनिष्ठ तबला वादकों पर उस्ताद जाकिर हुसैन की वादन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वास्तव में उस्ताद जाकिर हुसैन की सोलो वादन में भी कभी कभी उनके द्वारा निर्मित इस साथ संगत की शैली का प्रयोग होता रहता है। पृष्ठ संख्या 141। यह वादन यकीनन आसान नहीं है। उस्ताद जाकिर हुसैन इतने लोकप्रिय और प्रभावी कलाकार हैं कि पंडित आनंदो चटर्जी या पंडित सुरेश तलवलकर जैसे कलाकारों को छोड़कर बाकी सभी तबला वादकों के सोलो वादन और साथ संगत की तबला वादन शैली पर उस्ताद जाकिर हुसैन का असर दिखाई देता है। अच्छे श्रोत गण के सामने उस्ताद जाकिर हुसैन विद्वतापूर्ण वादन करते हैं। तबले के उस्तादों पंडितों की बरसी में वे अलग अलग घराने का खानदानी तबला पेश करते हैं। उनके सोलो वादन में श्रोताओं की पसंदगी और रसिकता का स्तर देखकर उसके अनुरूप तबला वादन बहुत से कलाकार और विद्यार्थी गण करते हैं। महान खानदानी तबला वादक जब लुप्त हो गए, उसी समय सितार, सरोद आदि साजों की लोकप्रियता ने उच्चांक प्रस्थापित किया। इसी वजह से सोलो तबला वादन भी महफिलों में कम होने लगा। आदर्श सोलो वादकों की घरानेदार शैली का असर भी धीरे धीरे कम होता गया और वादकों के जो भी सोलो वादन के कार्यक्रम महफिलों में संपन्न होते हैं, उनमें उनके तबला वादन की सामग्री एवं शैली तथा लुप्त हुए पुराने खानदानी तबला वादकों की सामग्री और शैली में बहुत फर्क आने लगा, जो माहिर रसिकों की बेचैनी का एक कारण है। वह फर्क निम्नलिखित है। पुराने जमाने में तबले का मुंह 6 से 6 सही 1/2 इंच का हुआ करता था। ऐसे तबले पर वादन करते समय हाथ एवं उंगलियों का रख रखाव ज्यादा कष्टप्रद और मेहनत भरा था। सोलो वादन साधारणतः काली 3 या 4 पट्टी में होता था। शायद सात संगत के कारणवश नए तबला वादक पांच सही 1/2 इंच के छोटे मुंह वाले तबले पर वादन करने लगे हैं। ऐसे तबले पर सात संगत करते समय हाथ के रख रखाव में भी जो फर्क आया, उस वजह से पेश किया जाने वाला आज का तबला वादन थोड़ा आसान और कमजोर होने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है सितार सरोद के साथ बजाने योग्य मर्यादित शब्द संपत्ति का प्रयोग सोलो वादन में भी होने लगा है। सोलो वादन करने के अवसरों के घटने से सोलो वादन के लिए होने वाले रियाज का समय भी घट गया और अपने जिन शब्दों का रियाज होता था उनके बदले सात संगत में काम आने वाली रचनाओं का रियाज होने लगा है। सोलो वादन के लिए जो एक अलग किस्म का चिंतन अपेक्षित होता है वह भी कम हो गया है। इसी कारण वैचारिक प्रक्रिया युक्त धीमी लय का पेशकार सुनने को नहीं मिलता। पृष्ठ संख्या 142। सोलो वादन में पेशकार कायदा रेला गत टुकड़ा इत्यादि भाषा प्रधान रचनाओं के बदले विविध चलनों तथा तिहाइयों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है। उसी तरह लयकारी के अलग प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा ध्यान दिए जाने लगे हैं। श्रोताओं की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए तबले पर कलात्मक नादों की निर्मिति पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और खानदानी बंदिशों का प्रयोग कम हो गया। श्रोताओं में भी माहिर रसिकों एवं तबला वादन समझने वाले वालों की उपस्थिति कम होने से पुरानी भाषा प्रधान खानदानी रचनाओं की अपेक्षाएं कम होती गईं और कलाकार जो कुछ बजाएगा वही सुनने की श्रोताओं के मन की तैयारी होने लगी। माहिर श्रोताओं के अभाव में वादक और श्रोताओं का कालवर्धक दुतर्फा नेत्र संवाद भी कम होने लगा है। पुराने जमाने का वादन ताल की खंडबद्ध मर्यादा में होता था। आजकल ज्यादातर मर्यादित शब्द समूहों की तैयारी में बजाने वाली छोटी रचनाओं के प्रयोग से वादन प्रस्तुत होता है। इसलिए नगमे की अनुपस्थिति में यह वादन किस ताल में हो रहा है यह समझना मुश्किल हो जाता है। आज का तबला वादन सुनते समय निश्चय ही तबले की चाट और बाएं पर निकलने वाले गूंज युक्त और घुमारे के अक्षर मधुर नाद की निर्मिति करने वाले हैं। माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर की सहायता से कारण यह नाद अधिक प्रभावकारक लगता है। संक्षेप में मुझे लगता है कि आज का तबला वादन अधिक नाजुक स्वरमय और मधुर हो गया है, किंतु यह वादन सुनते वक्त पुराने समय के वादन में महसूस होने वाली जो एक चुस्त दमखम की एवं कलात्मक वादन शैली सुनने को मिलती थी उसका अनुभव अब कम मात्रा में प्राप्त होता है। धीमी लय में ताल के अनुसार किया पेशकार वादन आज सुनने में नहीं आता। उसके बजाय लग्गी से मेल रखने वाली छोटी छोटी तैयार रचनाएं प्रस्तुत करने पर ज्यादा ध्यान दिया हुआ दिखाई देता है। जो कायदे प्रस्तुत होते हैं उनमें से ज्यादातर स्वनिर्मित होते हैं, इसलिए खानदानी पारंपरिक कायदे एवं उनका पारंपरिक कलात्मक विकास आज सुनने में नहीं आता। पुराने जमाने के तबला वादन में जो काव्यमय शब्द प्रधान और मधुर गतों का प्रस्तुतिकरण होता था वह भी आज बहुत कम हो गया है। अगर ऐसी गतें बजती भी हैं तो उनका निकास कम असरदार होता है। आज का तबला वादक पेचदार एवं अलग प्रकार की लयकारी के प्रस्तुतिकरण में ही मशगूल है। इसलिए समझदार श्रोता को खानदानी तबला वादन शैली सुनने को नहीं मिलती। पृष्ठ संख्या 143। साथ संगत के तबले में भी पारंपरिक तबला वादन के पेशकार कायदा, रेला आदि रचनाओं का प्रयोग आज भी असरदार तरीके से कर सकना संभव है। शायद इन रचनाओं के शास्त्र शुद्ध और पारंपरिक पद्धति से किए जाने वाले विकास पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इस रचना की समाप्ति आज के दौर की समुचित तिहाई से की जाए तो श्रोताओं को वही आनंद मिल सकता है। अगर महान सितार वादक, सरोद वादक, कलाकार इन पारंपरिक रचनाओं के प्रयोग को बढ़ावा दें तभी उपयुक्त बात संभव है। लेकिन ये वादक लय पर अधिकार प्राप्त किए हुए हैं और वे तबला वादकों से सिर्फ तैयार और लयकारी युक्त तबला बजाने की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा लगता है कि घरानेदार तबला वादक के पेशकार कायदे, रेले और उनके विकास का आनंद ये वादक महफिल में नहीं लेते। अगर वे कलाकार यह आनंद लेंगे तो कुशल तबला वादक निश्चय ही खानदानी तबला प्रस्तुत करेंगे और फिर से खानदानी रचनाओं का रियाज करने लगेंगे। फलतः सोलो तबला वादन या सात संगत में लयकारी के तैयार तबले के साथ अव्वल दर्जे का भाषा प्रधान तबला भी फिर से बजने लगेगा। कभी कभी मन में आता है कि क्या भविष्य में कभी हमें घरानेदार परंपरावादी समृद्ध रचनाओं के प्रयोग से प्रस्तुत होने वाला तबला वादन सुनने को मिलेगा। इसका जवाब मुझे तो नहीं, ऐसा ही लगता है, लेकिन यह हकीकत है और उसे हमें स्वीकारना ही होगा।